कहना कि जो क्लोजिंग है वो तीन में नहीं कर रहे हैं, तो तीन और कम से कम दो या तीन आपको कट्स मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट की। और इसके बाद फिर ये कि वो लोग जिन्होंने घर बुक करवाए हुए थे और वो दे आर वेरी गुड डील्स इन द मार्केट राइट नाउ, तो वो जो घर बुक करवाए थे उसमें वो उनकी क्लोजिंग नहीं कर सक रहे, वो अच्छे प्राइसेस में आपको मिल रहे हैं, तो उनकी भी क्लोजिंग सेफ ऑन सिक्स मंथ्स के बाद है, तो आपको तीन या चार और, तो अगर 4% पे आके हमारा बैंक ऑफ कनाडा का रेट है तो वो 3% पे भी आ जाए तो खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ही ऐसे है। देखिए अगर आपको 3 more cuts मिल जाते हैं ना, अभी प्राइम चल रहा है आपका लेट से 6.7, 3 cuts आपको 3 quarter के मिलते हैं, तो इट्स मीन के 5.95 पे आके आप खड़े हो गए हैं। तो दूसरी साइड से आप 4.5 से अगर 3 cuts लगते हैं तो आप नीचे जाएंगे 3.75 पे।
ठीक,
तो आप देखें कितना डिफरेंस बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर में और कट आ रहे हैं 3, उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन नीचे जाती जाएगी ऑब्वियसली वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा। क्यों? क्योंकि कनाडा के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट 4% भी है ना तो वो भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे घरों की वैल्यू जो है वो ज्यादा है।
सही बात है,
घरों की वैल्यू ज्यादा है, 4% इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ज्यादा है।
शिराज शफीक का नंबर याद रखें, 4165028000, 4165028000 शिराज शफीक का फोन नंबर है, अकाल मॉर्गेजेस से इनका ताल्लुक है। शिराज एक दफा अपना नंबर खुद भी बता दें और कब आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है।
देखिए जी, हम लोग जो अकाल मॉर्गेज वाले हैं पिछले 20-22 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर सोल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज अपने नाम और काम दोनों की वजह से जानी जाती है। आप किसी भी किस्म की मॉर्गेज देख रहे हैं, चाहे आपको कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज चाहिए या कमर्शियल मॉर्गेज चाहिए या किसी भी किस्म की लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, या आपको फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहे हैं या फिर आपको इक्विपमेंट बाय करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें जी, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000, 416-502-8000। और इवन आपको कोई किसी किस्म की भी कोई आपको असेसमेंट करवानी है अपनी मॉर्गेज से रिलेटेड, या आप रीफाइनेंस करना चाह रहे हैं, कोई ऑप्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, मैंने आपको नंबर पहले ही दे दिया है, फिर भी दोबारा नंबर नोट कर लें,
416-502-8000 शिराज शफी का फोन नंबर है। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग मॉर्गेजेस प्लीज गिव मा कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माजिद भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अब कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दी नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com, लोकल नंबर 6478724900।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान, यूज लिम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं बराह रास्त, जिसको आप भेजना चाहें, बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर, कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लिम्फाई।
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
माजिद भाई अभी हंस रहे थे मेरे ऊपर। जरा प्लीज आमिर निकालिए म्यूइंग, MEWING म्यूइंग निकाले। मैं कहना चाहती हूँ, अभी मैं कोई प्रैक्टिस कर रही थी तो माजिद भाई ने ना बेचारे बहुत परेशान थे कि व्हाट हैपन टू आरफा। हाँ देखिए साहब, अभी अभी मेरे पास न्यूज आई है। अच्छा, अक्सर ट्रेंड्स ना लड़कियों में आया करते होते हैं, ये लड़कों में एक ट्रेंड आया है और इसमें जॉ को अपने को फाइन लाइन करने के लिए ना, और वो कहते हैं लड़कों ने बातचीत कम करनी शुरू कर दी है, क्लास में बैठते हैं तो क्लास को अटेंड नहीं करते, तो वो यही अपना जॉ का इस तरह से करते हैं। वेरी स्ट्रेंज ये चीज है। अभी न्यूइंग आपको मैं दिखाती हूँ कि है क्या। तो मैं वो कर रही थी, उसमें वो ये करते हैं क्लास में बैठे हुए ना, देखिए मेरी जॉ लाइन अगर आप देखिए, मतलब मैं उम्र ज्यादा है ना जॉ लाइन, तो वो ऐसे करके बैठ जाते हैं तो जिसमें ये जो जॉ लाइन है ये बहुत वाजे हो जाती है, जिसमें आप उनसे बात करो तो बात का जवाब नहीं देते, अग्गे ही नहीं बोलते। ये देखें म्यूइंग में वो क्या करते हैं, अब तरीका कार क्या है। ये देखें, जो लेफ्ट वाला शख्स है इसने म्यूइंग की हुई है, राइट साइड पे उसकी एक्चुअल शक्ल है, तो वो इसका तरीका कार क्या है। अगर आप आमिर इसकी वीडियोस दिखाएं तो वो जो जबान है ना उसको तालू के साथ लगा लिया जाता है, बिल्कुल तालू के साथ लगा के गर्दन के पास एक खींच लिया जाता है। यू कैन शो मी एज वेल।
नहीं मतलब उसके लिए उम्र का तकाजा भी आप ट्राई मत करें।
नहीं ये नो, उम्र का तकाजा क्या है इसमें,
उम्र का
लोग
तकाजा है
वो अपनी जॉ लाइन दिखाने के लिए।
अगर 60 साल में वो इतनी मजबूत हो चुकी है आपकी जॉ लाइन कि आप चाहे उसको कुछ भी कर ले उसमें फर्क नहीं पड़ सकता।
ओके, दो स्पॉन्सर्स का पैगाम है। लेट मी टेक यू टू अ ब्यूटिफुल स्टोरी। इस स्टोरी को मैं
स्टोरी से पहले आप
कवर करती हूँ। नहीं ये स्टोरी वो आ गए सन लाइफ के हमारे प्रदीप जी आ गए। अगर प्रदीप जी को बुरा ना लगे तो इट्स इंडिया की एक स्टोरी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी। प्रदीप जी आप तशरीफ लाइएगा। विलेज टेस्ट का जिक्र करना चाहती हूँ। अगर लजीज जायकेदार अगर आपने खाना खाना है तो मेरी रिक्वेस्ट है विलेज टेस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। दे हैव टू लोकेशंस 2294 लेक शोर वेस्ट के साथ साथ दे आर इन Mississauga, 4141 Dixie Road पे, that is Billy Stays, Faisal Chitta साहब, and the हलाल की अगर हम बात करते हैं तो largest buffet village taste का आपको मिलता है. मैं एक इंडिया की आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. इसमें ऑफ कोर्स चंद एक राइटर्स का जिक्र भी आएगा, कैथरीन फ्रैंक का जिक्र आएगा जिन्होंने मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा के बारे में, द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी उन्होंने लिखी. इसके अलावा इसमें एक दो और राइटर्स का जिक्र आएगा, मिस्टर भोन का जिक्र आएगा, विजय लक्ष्मी के दोस्त थे मनु भगवान जो कि विजय लक्ष्मी की दोस्त थे. अब कौन थी विजय लक्ष्मी? सर हम स्टार्ट करते हैं जनाब नेहरू खानदान से. नेहरू खानदान आपको पता है अपने जमाने का फाइनेस्ट फैमिली कंसिडर की जाती थी. फाइनेंशली, तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से कोई कमी नहीं थी. ऑफकोर्स बरतानिया से इंडिपेंडेंस में जनाब नेहरू फैमिली का बड़ा रोल था. उनकी वालदा की तरबियत जनाब, ये हमारे इंडिया के जो फर्स्ट फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जनाब नेहरू साहब, इनकी बहन थी, ये उनकी फैमिली है. आप देखिएगा कि एक साइड पे उनकी वालदा बैठी है, इनकी वालदा का नाम स्वरूप रानी था. अगर आप देखें बाई साइड पे, ये नेहरू जी की वालदा उनके साथ है, स्वरूप रानी इनका नाम है. इनकी बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था. इनकी एक और बहन भी थी और उसका भी आगे जाके जिक्र आएगा. विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू जी के बाद बड़ा रोल प्ले किया. ये उनकी एक सिस्टर थी. अब विजय लक्ष्मी पंडित, मेरा दिल करता है कि जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं मैं आपको मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा की भी पिक्चर दिखा दूं. व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन शी वॉज, आई स्वेयर टू गॉड. मतलब ये नहीं कि शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी डिड अ लॉट फॉर इंडिया. मैं आज से 28 साल पहले जब ये प्रोग्राम शुरू की थी तब भी मैंने ये कहा था कि शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. वॉट एवर शी डिड फॉर इंडिया, शी डिड द बेस्ट. यकीनन हर इंसान में कमियां कोताहियां भी हुआ करती हैं. अब ये किताब कैथरीन फ्रैंक की है, द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी, जिसमें मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा के बारे में देखे, शी वॉज सच अ प्रिटी वंडरफुल पर्सन. और अब इंदिरा गांधी साहिबा ने अपनी जिंदगी में अपने कानों से चंद लफ्ज ऐसे सुने. नेहरू जी क्योंकि बहुत इंडिया की कॉज में, जाहिर है ब्रिटिशर्स को वहां से निकालना, डिप्लोमेटिक वे के साथ डील करना, इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो फैमिली की सियासत को समझ ही ना सके. तो आज मैं वही फैमिली की सियासत बात कर रही थी जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में बात कर रही थी. बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि घर अगर गरीब हो तो गुर्बत की वजह से लड़ाइयां हुआ करती होती हैं, मगर बहुत पैसा भी. मगर जब मैं नेहरू खानदान का जिक्र करती हूं तो ये वो खानदान था, वन ऑफ द एलीट फैमिली इन इट्स टाइम. तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, अपना स्टेटस के लिहाज से, देयर वाज नथिंग के कोई चीज इसमें कम हो. इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी वालदा स्वरूप रानी जिनको भी हमने आपको दिखाया, और इनकी एक और बहन, इनको जाहिर है फिर जब नेहरू जी को मोहब्बत होती है, जब वो शादी करते हैं, कमला नेहरू के साथ शादी करते हैं, तो इनकी पुप्पो जो थी ना, इनकी जो सिस्टर थी विजय लक्ष्मी, उन्होंने इसको कोई 100% अप्रूवल नहीं था दिया, ठीक है. और जरा मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी. वो ये समझते थे ये विजय लक्ष्मी, शी वॉज नेहरू सिस्टर, शी इन्होंने सफारतकारी की. सबसे पहले इंडिया बनने से पहले रशिया में सफारतकारी की, इन्होंने बरतानिया में सफारतकारी की, और उसके बाद भी इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए. बल्कि देर वॉज अ स्टेज जिसमें इनका ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, एक लेक्चर के तौर पर लेक्चर देने के लिए इंग्लैंड जा रही थी, बट शी इमीडिएटली केम बैक. अब आपको मैं दोनों तस्वीरें साथ साथ रखवाऊंगी. तो कहते हैं कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जो थी, बचपन में उन्होंने खुद देखा था कि मेरे वालिद यानी नेहरू साहब इतने मसरूफ थे कि उनको पता ही नहीं था कि घर में खिचड़ी क्या पक रही है. अब जब खिचड़ी की बारी बात मैं करती हूं तो कहते हैं कि जब कमला जी से नेहरू जी की शादी होना करार पाई तो उनकी बहन और उनकी जो मदर थी स्वरूप रानी, इन्होंने भी एतराज किया कि वो स्टेटस में तुम्हारे बराबर नहीं है, वो तालीम में, उसके लिए जिस फैमिली से और जिस फ्रेंडशिप में तुम मिलते हो, जो तुम खेलते हो, जो गेम्स तुम खेलते हो, उसमें वो कोई भी चीज नहीं, तो वो तुम्हारे लायक नहीं. मगर बहरहाल मर्द के दिल में आया, उसने शादी की, कमला नेहरू से उनकी शादी होगी, सो शी बिकेम कमला नेहरू. अब साहब ना तो ये उनकी सास को मामला इतना अच्छा लगा, ना विजय लक्ष्मी जी को अच्छा लगा, ना उनकी छोटी बहन को ये अच्छा लगा। और उसके बाद फिर कमला जी से पैदाइश हो जाती है, मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा की पैदाइश हो जाती है। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने कानों से ये लफ्ज सुने कि विजय लक्ष्मी जो थी ना वो उनको खूबसूरत नहीं समझती थी। हालांकि मैं तो कहती हूँ इंदिरा गांधी खूबसूरत ही बहुत थी, विजय लक्ष्मी जी तो बल्कि उतनी प्यारी नहीं थी, है ना। मगर यू नो दिस इज व्हाट द फैमिली पॉलिटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आता गुंदिये कुड़िये तेरा सिर हिलता। तो उनकी पुप्पो के ताल्लुकात कहते हैं थोड़े से कशीदा थे। इंदिरा गांधी जब एक छोटी सी बच्ची थी तो उनकी वालदा कमला नेहरू और इनकी जो नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी जो थी, इनको प्यार से नान के नाम से पुकारा जाता था। और वो और इनकी जो दादी मां थी स्वरूप रानी, वो इंदिरा गांधी को और उनकी वालदा को इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी जी को पसंद ना करना तो नहीं, मतलब वो उनको खूबसूरत तसव्वुर नहीं करती थी। ये जनाब कैथरीन फ्रैंक का जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने इंदिरा गांधी, मैं अपने पास से नहीं कहानी सुना रही आपको, कैथरीन फ्रैंक उनकी सुहानी उम्मीद लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती है कि विजय लक्ष्मी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर उनका प्यार शेयर हो गया, कमला जी आ गई तो माँ का भी प्यार शेयर हो गया क्योंकि नेहरू जी की, मगर नेहरू जी वॉज फोकस फॉर द कंट्री, अपने इंडिया के लिए फोकस थे। बहरहाल ना माँ और ना बहन कमला को नेहरू जी के काबिल समझते ही नहीं थे। बहरहाल कैथरीन फ्लैंक लिखती हैं कि कमला के खानदान के दीगर अफराद, अब आलम यह था सास बहू का रिश्ता, मैंने लेडी डियाना का भी आपके साथ जिक्र किया, वो ये कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि ये लोग अंग्रेजी की फिल्में देखने के लिए जाते थे और कमला जी को साथ लेके नहीं जाते थे, यानी इंदिरा गांधी की जो वाल्व है। आई स्वेयर टू गॉड आई टुक इट ऑन माय हार्ट कि एक बच्चा जब वो देखता है कि मेरी माँ के साथ कितना दोरुखा सलूक किया जा रहा है और बाप को पता भी नहीं इन चीजों को, बिकॉज ही वॉज वेरी फोकस्ड फॉर हिज कॉज फॉर द कंट्री। बहरहाल कहते हैं कि कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि कमला को खानदान के दीगर अफराद फिल्में देखने के लिए साथ नहीं लेके जाते थे क्योंकि वो कहते थे कमला की अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। हाँ, इनकी तालीम अच्छी थी, इन्होंने तो शादी के वक्त ही कहा था कि कमला जी तो नेहरू जी के काबिल ही नहीं है। बहरहाल कहते हैं हालात खराब होने लगे, उन जमाने में दंगे फसाद होने लगे, जवाहरलाल नेहरू जी को जेलों में रहना पड़ता था, कई कई दिन घरों से बाहर रहते थे तो उनको पता ही नहीं था कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है, मगर बच्चे तो देख रहे थे ना, इंदिरा गांधी भी, जाहिर है बच्चे को मत समझिएगा कि उसको होश नहीं होती, एक एक लफ्ज उसके कान में रहता है। और इस कहानी को एंड तक देखिएगा कि जिंदगी के आखिर दम तक इंदिरा जी ने उस दर्द को महसूस किया जो जो उनके आगे एक्शंस थे विद इन फैमिली। शी वॉज अ ग्रेट लीडर फॉर इंडिया। बहरहाल कैथरीन फ्रैंक वो कहते हैं कि अगर खतो किताबत का जायजा लिया जाए तो जो नेहरू खानदान की खवातीन स्वरूप रानी, नान यानी विजय लक्ष्मी और कमला नेहरू के प्यार के लिए मुकाबले में ही रहती थी, मगर बीवी तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती ना। ये वो जमाना था जिस जमाने में सारा खानदान भाई जा रहा होता था एयरपोर्ट पे, सारे रो रहे होते थे, गले जफियां मार रहे होते थे, बीवी बेचारी नुक्कर में लग के खड़ी होती थी कि वो कैसे अपने गले मियां को गले मिले। एनीवेज बहरा अब कहते हैं विजय लक्ष्मी जो थी ना, जब इंदिरा जी बच्ची थी तो वो कहा करती होती थी, अच्छा नेहरू जी से विजय लक्ष्मी बहुत प्यार, घुड़सवारी भी ये किया करते होते थे, एक से एक बड़ी जो 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 इलीट क्लास की गेम थी ये विजय लक्ष्मी जी उनके साथ खेला करती होती थी। दैट इज द रीजन इन्होंने बड़ी कमाल की डिप्लोमेटिक पोजीशंस भी बाद में होल्ड की थी। तो बहरहाल एक है पपल जियाकर, वो इंदिरा गांधी साहिबा की सवाने उम्र में लिखते हैं कि अचानक विजय लक्ष्मी को मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़की ने उनके भाई के साथ जगह ले ली है, कमला विजय लक्ष्मी, और उन्हें कहने लगी उनकी नजर में कमला के पास ना तो शराफत थी, ना नेहरू खानदान के घराने के सरबरा बनने की सलाहियत थी, और ना ही उनको उनकी नेहरू जी की जो कमला जी थी उतनी सिंपल थी, उनको महंगे कपड़ों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल اندرا گاندھی بطور چائلڈ ان کو پھپھی کا اور دادی کا سلوک ماں کے ساتھ اچھا نہیں لگا, مگر انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی, وہ ایک ریسپیکٹ, وہ ایک عنصر ان کے بیچ میں تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ, مگر جب انہوں نے اپنے بارے میں ان کا پراپیگنڈا سنا کہ اندرا گاندھی خوبصورت نہیں ہے, کالی ہے, سانولی ہے, کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی جو ہے نا, ان کو وقت سے پہلے سنجیدہ کر دیا تھا اس چیز نے, ٹھیک ہے, اور وہ بہت موڈی بن گئی تھی. نہ صرف یہ کہ وہ بچپن کے ان دنوں میں, بلکہ 50 سال بعد تک بھی وہ چیز ان کے دماغ میں امپرنٹڈ رہی. ہاؤ پپی جی بہیوڈ ود ہم, ہاؤ دادی جی بہیوڈ ود ہر مدر اینڈ ہر. بہرحال کہتے ہیں اندرا گاندھی صاحبہ نے اپنے انٹرویوز میں بھی اس بات کو شیئر کیا کہ وہ جب ایسی بات کرتی تھی تو بہت تکلیف تو دی تھی, اور اس نے میری خود اعتمادی کو ٹھیس ضرور پہنچائی تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں خاموش اور تنہائی پسند ہو گئی تھی, وہ منگل ہی نہیں کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر فیروز سے اندرا گاندھی صاحبہ کو محبت ہو جاتی ہے, شادی کرنے کی بات ہوئی. اب لو جی, پھوپھیاں کہاں پسند کریں, انہوں نے کہا تو فیروز کے ساتھ شادی کرے گی, انہوں نے کہا ہاں مجھے پسند ہے وہ. بلکہ کہتے ہیں آئی واز سرپرائز ٹو نو اباؤٹ دس, ان کی ایک پھوپھو تھی کرشنا ان کا نام تھا, تو انہوں نے کہا چھڈ پڑے فیروز کو, چھوڑ پڑے تو 4-5 اور لڑکوں سے مل, تجھے کوئی اور لڑکا پسند آ جائے گا. اندرا گاندھی صاحبہ نے کہا میں کیوں اور لڑکوں سے ملوں, مجھے فیروز پسند ہے, میں فیروز سے شادی کرنا چاہتی ہوں. بھلے یہ شادی رہی نہ رہی وہ ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے, بٹ شی سیڈ نو, میں کیوں اور لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھوں. بلکہ ایک اور کہتے ہیں کہ وجے لکشمی جو تھی نا ان کی جو پھپھو, بڑی اسٹرانگ پھپھو تھی, تو اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ابھی نا ایسا کرو تم فیروز کو سائڈ پہ رکھو, تم 2-4 لڑکوں سے ذرا رومانٹک ریلیشن پیدا کرو, دیکھنا پھر فیروز اتر جائے گا تمہارے دل سے تو تم کسی اور سے شادی کر لو. بہرحال کہتے ہیں اندرا گاندھی کو یہ بات بہت بری لگی. الٹیمیٹلی شی میرڈ, شی نیور ہیڈ ادر افیئرز ود ہم, شی میرڈ ود فیروز, اور پھر اس کے بعد ان سے ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. اچھا وجے لکشمی کی ہم بات کرتے ہیں. وجے لکشمی ویل پلیس, ویل ٹرینڈ, ویل ایجوکیٹڈ, اسٹیٹس کے لحاظ سے بہت بہترین تھی. ہندوستان بننے سے پہلے, یعنی تقسیم میں ہند سے پہلے جو وجے لکشمی تھیں, ظاہرہ نہرو جی زندہ تھے, اندرا گاندھی چھوٹی تھیں, اور وجے لکشمی صاحبہ جو تھی نا یہ سفیر بن کے ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے, رشیا میں تعیناتی ہو گئی تھی, یہ بفور پارٹیشن اس کی بات ہے. بہرحال اس کے بعد پھر پارٹیشن ہو جاتی ہے, پارٹیشن ہونے کے بعد ان کو برطانیہ کا سفیر مقرر کر دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کی فرسٹ ٹائم وجے لکشمی جی کی فور پارٹیشن تعیناتی ہوئی نا رشیا میں, تو جب رشیا کی گورنمنٹ نے ان کو فرقہ کوٹ ایک تحفے میں دیا, فرقہ کوٹ ہے نا, اب پھپھی بھتیجی کے بیچ میں ایک ٹسل تو آ جاتی ہے نا. آپ سوچیے ہمارے گھروں میں, آئی جسٹ تھنک اباؤٹ یو نو آر اون ہومس. تو انہوں نے نا ان کو اس کے فر کوٹ کا کالر نہیں اچھا لگتا تھا, انہوں نے اس پہ تبصرہ کر دیا. کہتے ہیں اندرا گاندھی صاحبہ نے سخت الفاظ میں تنقید کی, حالانکہ یہ کوٹ جو تھا سوویت گورنمنٹ نے وجے لکشمی صاحبہ کو دیا تھا. تو اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وجے لکشمی صاحبہ, بیکاز دے بلانگ ٹو اے گڈ فیملی, ایجوکیشن, اسٹیٹس, ایوری تھنگ میٹر ٹو دیم, ان کی جو بیٹیاں چندر لیکھا اور نینانتارا جو تھی نا وہ امیرکن اسکولس میں پڑھتی ہوتی تھیں, اس پہ بھی محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ کو تنقید انہوں نے کی مختلف طرح سے. ایک اور رائٹر ہیں ساگریکا گھوش, اپنی کتاب انڈیا کی سب سے طاقتور وزیر اعظم میں لکھتی ہیں کہ یہاں بھی پھپھی اور بھانجی کے درمیان پرانی دشمنی کھل کر سامنے, انہوں نے اندرا گاندھی کو, اب یہ کیا ہوا, ساگریکا کیا کہتی ہیں, پھر ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان بن گیا, ہندوستان بنا تو نہرو جی برطانیہ کی وزٹ پہ گئے, ویری اسٹرینج بات, جب یہ برطانیہ کی وزٹ پہ گئے تو وہاں کی جو برطانیہ کی سفیر تھیں وجے لکشمی پنڈت تھیں, اینڈ آف کورس ایک سفیر کا کام ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کنٹری کا آتا ہے تو وہ کس سے ملاقات کرنی ہے, کس سے نہیں ملاقات کرنی, پوری اسکیجولنگ وہ کرتا ہے. تو وجے لکشمی نے کیا کیا کہ نہرو جی کی تمام کی تمام ملاقاتیں اور ان کی پوری آئٹنری تیار کی, کس سے ملنا ہے, کب ملنا ہے, کہاں جانا ہے. اندرا گاندھی بھی ساتھ تھی, मगर कहते हैं कि जान बूझ के जो मुलाकातें थी उसमें विजय लक्ष्मी जाया करती थी बिकॉज शी वॉज एम्बेसडर थी वहां पे, और गांधी नेहरू जी भी जाया करते थे मगर इंदिरा गांधी नहीं जाया करती थी। अब यहां पे मैं वो कहते हैं कि इसमें अब आपको हैरत होगी, मेरे ऑफिस में सबको हैरत हुई थी, नेहरू जी की एक मुलाकात इन्होंने यूनिवर्सिटी में अजीम तरीन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कराई। अब आप इमेजिन कीजिएगा, नेहरू जी को खुद चाहिए था कि वो कहते भाई मैंने इंदिरा गांधी को कैसे अब्बा जी थे, हाय मैं मर जावा। कहते हैं आई स्वर टू गॉड इट मेड मी ऑलमोस्ट क्राइड, ब्रोक माई हार्ट। तो नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी ने ये मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन से नेहरू जी की कराई, अल्बर्ट आइंस्टाइन से विजय लक्ष्मी भी वहां पे मौजूद थी, नेहरू जी ने मुलाकात की मगर इंदिरा गांधी को, कहते हैं कि वो मुख्तलिफ लीडर्स से इन लोगों से मिले मगर इंदिरा गांधी वॉज नॉट। अब इसको मैं दो एंगल से लेती हूँ, एक एंगल से लेती हूँ कि हिंदुस्तान के सफीर हों एम्बेसडर हों, देर आर सो सिंसियर टू देयर कंट्री कि लीडर टू लीडर मुलाकात कराई, एम्बेसडर साथ थी, ठीक है जी बेटी का क्या काम है, है ना, एक इसको मैं इस एंगल से लेती हूँ। मगर दूसरे एंगल से अगर मैं लूं तो मैं ये कहती हूँ कि वो पुपी पते जी दी टसल चली जा रही थी, हाँ आगे जाके आपको ये टसल और महसूस होगी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी वॉज इन इंग्लैंड, बाप के साथ गई थी मगर इन मुलाकातों में इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी इनकी जब मुलाकात नहीं होती तो शी वॉज वेरी डिप्रेस। उस वक्त एक इंडिया के साइंसदान थे अजीम साइंसदान भाभा होमी भाभा, ये भी वहां पे हुआ करते थे। तो इंदिरा जी ना इंदिरा गांधी बाप के साथ थी बट शी वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एंड इरिटेटेड। तो वो होमी भाभा कहते हैं कि जब उनकी आइंस्टाइन से मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि शी वॉज लिटिल अपसेट। तो वो कहते हैं अक्सर क्योंकि वो अकेली रह जाया करती थी तो मैं उसको रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाया करता था। अलाला के बाद में वो कहते हैं ना भाभी अच्छी नहीं लगती, मगर इंदिरा गांधी जी का जब फिर बेटा राजीव गांधी हुआ, कहते हैं बिकॉज शी वॉज दी एम्बेसडर थी बरतानिया में, एम्बेसडर थी, और फिर राजीव गांधी का जब एडमिशन वहां पे यूनिवर्सिटी में हुआ बरतानिया में, तो ये हाई कमिश्नर थी बरतानिया में ना, तो इंदिरा गांधी जी के जो बड़े बेटे राजीव गांधी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तहान में शिरकत करने में विजय लक्ष्मी जो कि इनकी फूफी थी और इंदिरा गांधी साहिबा की फूफी थी, उन्होंने मदद जरूर की। अब हुआ क्या कि नेहरू जी की डेथ हो जाती है, नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और नेहरू जी की डेथ के बाद अब प्राइम मिनिस्टर, अच्छा उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे कामराज के, कामराज प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ 64 में ना, वो जो कामराज उस वक्त के, दिस इज द प्रेसिडेंट जो लोग देख रहे हैं, कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनको किंग मेकर भी, ये जो कामराज थे इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना उनको कामराज साहब जैसे इन्होंने कहा कि सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस थे 1964 से 67 तक, लाल बहादुर और इंदिरा जी दोनों को इन्होंने किया। अब आगे सुनिएगा, अब्बा जी की डेथ हो गई, नेहरू साहब की डेथ हो जाती है। अब दो पार्टियां थी, इंदिरा गांधी जब नेहरू जी की डेथ होती है तो विजय लक्ष्मी जो थी ना एक लेक्चर के लिए इंग्लैंड जा रही थी, ऑफकोर्स शी वॉज नहीं अभी लाल बहादुर शास्त्री को कामराज ने बना दिया। कामराज की दो साल के बाद 66 में आके कामराज की डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ होती है। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 66 में, तो इनकी फुप्पो विजय लक्ष्मी जो थी शी वॉज ट्रेवलिंग टू इंग्लैंड फॉर अ लेक्चर। इन्होंने फौरी तौर पे जो अपना ट्रिप था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया बिकॉज उनका ख्याल था कि मेरे में वो खूबियां हैं, यानी मैं एम्बेसडर रही हूं, सफीर रही हूं रशिया की भी और बरतानिया की भी, तो यकीनन मैं यकीनन प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूं। अच्छा
जो नेहरू थे ना, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, फूल नगर एक जगह का नाम था, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और अब ये वापस आती हैं तो इनकी फूफी जो थी वो तो खुद वजीर आजम बनना चाहती थी लाल बहादुर शास्त्री के बाद, ठीक। और वो जो जगह थी फूलपुर, फूलपुर से इनकी फूफो विजय लक्ष्मी ने, पहला हक किसका होता है, बेटी का हक होता है ना, मगर बहन ने कहा मैंने तो फूलपुर से इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। और लोकसभा पार्टी का जिमनी इंतखाब में मोहतरमा इंदिरा गांधी साहब ने शरीक होना था। विजय लक्ष्मी ने कहा कि फूलपुर से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। दिस इज द टाइम कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहब ने अपनी पार्टी लोकसभा से चेंज करके राज्यसभा में ये शामिल हो जाती हैं। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शॉर्ट 66 में लाल बहादुर शास्त्री की वफात होती है। और उसके बाद जैसे मैंने कामराज के बारे में कहा, ही वॉज अ किंग मेकर, 1964 से 67 तक रहे, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, अगली प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी बन जाती हैं। अब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो विजय लक्ष्मी पुप्पी थी, है ना, कहने ना शरीके का दाना तो सिर दुखदियां भी खाना, आपने ये कहावत सुनी होगी। वो कहते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो विजय लक्ष्मी के अल्फाज गौर करें, उन्हें इंदिरा गांधी की काबिलियत पर शक था, ठीक है। उन्होंने इंदिरा गांधी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। और जरीर मसानी अपनी इंदिरा गांधी की सवाने उम्र में लिखते हैं कि विजय लक्ष्मी ने कहा, हाँ इंदिरा में खूबियां तो हैं, उन्हें सिर्फ तजुर्बे की जरूरत है, कुछ तजर्बा हासिल करने के बाद वो एक अच्छी वजीर आजम साबित हो सकती हैं। मैं उसकी मदद करूंगी और मुझे यकीन है कि वो अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेंगे। अब मत समझिएगा कि ये तमाम चीजें मोहतरमा इंदिरा गांधी, शी वॉज अ ग्रेट लीडर, उन्होंने हट के इन बातों का जवाब नहीं दिया, बट दीज थिंग्स वर इम्प्रिंटेड इन हर माइंड। मनु भगवान लिखते हैं, अब मनु भगवान का अगर मैं जिक्र करूं तो मनु भगवान वॉज वेरी क्लोज टू विजय लक्ष्मी, इनकी पुप्पो के बड़े करीब थे। तो वो कहती हैं कि जब फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो विजय लक्ष्मी जाया करती थी कभी कभी मिलने के लिए, मगर भाई आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है जिंदगी में, वो सदाएं पीछा करती हैं। आपने उसकी मां के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसको काला और कोजा भी कहा, और फिर आप जब इंग्लैंड की सफीर थी तो आपने उसको आइंस्टाइन और किसी वडेरे के साथ मिलने भी ना दिया, नुकर में बैठा के रखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो आपने ये कहा, हाँ मैं मदद कर सकती हूँ, वो बेहतर हो सकती हैं। तो कहते हैं जब वो इंदिरा गांधी बनी तो विजय लक्ष्मी कभी इनको जब मिलने के लिए जाया करती थी तो इंदिरा गांधी 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया करती होती थी। जाहिर है इन लोगों की प्राइम मिनिस्टर की और टीम होती है, तो वो उनको कहा करते थे कि बस 10 मिनट के बाद तुम कमरे में आ जाना। और बहरहाल इनकी फुप्पो जो थी ना कृष्णा, वो भी बस ऐसी ही थी। ये तो इंदिरा गांधी की कहानी थी। अच्छा, अब हुआ ये कि आगे आगे की बात सुनिएगा। जब फिर इंदिरा गांधी साहिबा आपका भला करे प्राइम मिनिस्टर बन गई, अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गई, क्योंकि विजय लक्ष्मी जो थी वो इससे पहले रशिया में भी रोल प्ले कर चुकी थी डिप्लोमेटिक, बर्तानिया में भी कर चुकी थी, तो बर्तानिया में ना इनकी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ताल्लुकात थे, इस फैमिली के आपको पता ही है बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे। तो ये विजय लक्ष्मी जो आई, इन्होंने कहा कि मुझे तुम वहां अपॉइंट कर दो, मैं कोट एंड कोट से आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। इनकी इंदिरा ने हाई कमिश्नर बनने की इनकी पेशकश को कहां ठुकराया। लॉर्ड माउंट बैटन ने मशवरा दिया, आप ऐसा करें विजय लक्ष्मी पंडित को एक बार फिर बर्तानिया में इंडिया की हाई कमिश्नर बना दें। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। ऑन द अदर साइड फ्रांस में मोहतरमा इंदिरा, जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसके लोग मोहतरमा इंदिरा गांधी के यानी काबिल एतमाद थे, पसंद के लोग थे, या दे हैड अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने विजय लक्ष्मी से कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपने एम्बेसडर ही बनना तो आप फ्रांस की एम्बेसडर बन जाए। विजय लक्ष्मी जी ने इस बात का इनकार कर दिया, शी सेड नो। अब आगे आ जाइएगा, ये बात बड़ी मजे की है। मैं कहती हूं इंसान को हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए, विजय लक्ष्मी ने जो कुछ भी किया उस बच्ची के दिमाग में इम्प्रिंट होता चला गया और अब वो 50 साल तक उसके दिमाग में रहेगा। वेयर एज जब लॉर्ड माउंट बैटन ने इनको कहा कि तुम विजय लक्ष्मी को एक बार फिर हाई कमिश्नर बना, उन्होंने कहा नो, उन्होंने कहा कि आप ऐसे अगर आपने हाई कमिश्नर बना तो आप फ्रांस की बन जाए, और जिसमें उन्होंने ये मनु भगवान जो विजय लक्ष्मी के बड़े करीबी थे वो लिखते हैं कि जब विजय लक्ष्मी ने एक मुलाकात के दौरान इंदिरा से पूछा तो मोहतरमा इंदिरा गांधी ने बड़ी बेतकल्लुफी से, उनकी किताब का है कि फूफी मुझे आप पर यकीन नहीं है। विजय लक्ष्मी ने उनकी इस बेतकल्लुफी को की तारीफ की और मोहतरमा इंदिरा गांधी के माथे को चूमा कि तुमने सच बोला और तुमने मेरे सामने, यू आर नॉट सेक स्नेक इन द ग्रास, तुमने मेरे सामने ये बात कही है। बहरहाल इंदिरा जी ने उसके बाद उनको फ्रांस की पेशकश की विच ही रिफ्यूज्ड। अब आगे आ जाइएगा, कहते हैं कि 1977 के इंतखाबात जब हुए ना, अब फुफी और भतीजी का झगड़ा खुलकर सामने आता है। कैसे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी 77 में, लोकसभा इंतखाबात का ऐलान किया तो जगजीवन राम और हेमवती नंदन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 10 दिन के अंदर इंदिरा जी की जो पुप्पी थी विजय लक्ष्मी पंडित, हालांकि इन्होंने सियासी रिटायरमेंट ले ली थी, इन्होंने कहा था मैं अब कभी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगी, लो जी शी केम बैक। अभी जो माजिद भाई ने कहानी नहीं सुनाई हमारे ट्रूडो सीनियर की, उसी तरह से विजय लक्ष्मी शी केम बैक एंड यू नो व्हाट, शी केम बैक इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आई। वो उन्होंने बल्कि एक अवामी तौर पे तकरीर के दौरान कहा कि इंदिरा और इमरजेंसी ने जमहूरी इदारों को कुचल के रख दिया है। बल्कि शिकागो टाइम्स ने इंदिरा गांधी को खबरदार किया था कि तुम विजय लक्ष्मी को जितना लाइट ले रही हो इतनी लाइट है नहीं, अगर ये जीत गई तो तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। अटल बिहारी वाजपेयी और शाही इमाम के साथ मिलकर जद्दोजहद आजादी की तर्ज पर विजय लक्ष्मी साहिबा ने एक बैन मजहबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। उनको उम्मीद थी कि मरारजी देसाई शायद उन्हें इंडिया का सदर बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन मरारजी देसाई ने उनको ये पेशकश नहीं की। एक बार कभी किसी ने पूछा भी उनसे तो कहने लगी कि मैं इतनी जल्दी दूसरा जनाजा चाहती नहीं, कि कुछ दिन पहले सदर फखरुद्दीन का इंतकाल हुआ था। अच्छा, अब आखिरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये वो घर जो इनका आबाई घर था आनंद भवन, जहां पर नेहरू जी, स्वरूप इनकी दादी माँ और विजय लक्ष्मी और कमला, ये सारे के सारे रहते थे। आबाई घर, आबाई हवेली जिसको हम कहते हैं, आनंद भवन थी। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने जो ये जगह थी ना, ये डोनेट की इन्होंने सरकार को 1970 में मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जो आनंद भवन सरकार को देने का ऐलान किया। अब विजय लक्ष्मी 1970 तक हयात थी, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मेरा बचपन मैंने अपने माँ बाप के साथ दिन गुजारे हैं, मुझे एक रात यहां गुजारने की इजाजत दे दो। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने कहा नो, कोट एंड कोट्स में, यानी जब इंदिरा गांधी ने अपनी आबाई रिहायश का आनंद भवन सरकार को देने का 1970 में ऐलान किया तो विजय लक्ष्मी ने ख्वाहिश जाहिर की कि दे देना, मगर मैं इसमें एक रात बिताना चाहती हूं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी का गुस्सा इस हद तक था कि उन्होंने कहा कि नो, आप इसमें एक रात नहीं गुजार सकते। आगे 1974 में जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की, छोटे बेटे संजय की शादी की थी 1974 में, विजय लक्ष्मी तब भी हयात थी। शी डिड नॉट, ये उनका घर था, जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं आप देखिए आनंद भवन, ये उनकी वो जगह थी। इवन जब संजय की शादी भी हुई तो इंदिरा गांधी साहिबा ने इस फुफी विजय लक्ष्मी को शादी में भी दावत नहीं दी। ये है सियासत और ये प्रोग्राम मैंने आप तक पहुंचाया लेम्फाई के ताबून से। अगर आपने रकम पाकिस्तान भिजवानी है तो प्लीज लेम्फाई को जरूर ताबून कीजिएगा। डाउनलोड करें ये ऐप, आपके एप्पल में और एंड्रॉइड दोनों पे है। आप लेम्फाई LEMFI आवाज के रेफरेंस से खास देखिए वहां पे। ہم نے پیش کیا یہ پروگرام آپ تک لیمفائی کے تعاون سے. جی ماجد بھائی, ناؤ واٹ ڈو یو سے؟
جیسے عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی ہو جائے. اینڈ ہے اس کا. پھپھی کو شادی میں نہیں بلایا.
نو, گھر میں رہنے کی نہیں دیا موقع جس میں بچپن. میں اس جگہ پہ انٹر کرانا چاہتی ہوں بیکاز یہ ہم کہانیاں بایوگرافیز کو جب دیکھتے ہیں, مگر کیونکہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پردیپ جی, ہی از فرام انڈیا, ہی کین ٹیل می دی ایگزیکٹ واٹ ہی نوز. پردیپ جی, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. وجے لکشمی اور اندرا گاندھی صاحبہ کی ساس, اور اندرا گاندھی کے بارے میں کیا ایز این انڈین آپ کیا جانتے ہیں؟
میں تو یہ جانتا ہوں کہ اندرا گاندھی جی نے ہندوستان کے لیے بہت کام کیا. شی ہیڈ اے لاٹ آف کریج. انہوں نے وہ اپنے ملک کے لیے انہوں نے جینا پورا کا پوری اپنی جیون دیا اور اپنے آپ کو دیش کے اوپر شہید کر دیا. اندرا جی نے اس میں انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, انہوں نے بہت سارے کام کیے ملک کے لیے.
دیکھو جس نے اپنی حویلی آنند بھون ملک کے دیش کو دے دی.
ایسے بہت سارے اس سمے لیڈر تھے جس میں ان کا نام نہیں لوں گا میں کیونکہ وقت نہیں ہے, لیکن اندرا جی نے بہت بڑے بڑے کام کیے. ان میں سب سے بڑا کام کیا 20-point پروگرام لگایا جس میں انڈیا میں بانڈیڈ لیبر ہوتے تھے ان کو آزاد کرایا, جو کہ پشت در پشت وڈیروں کے یہاں کام کرتے تھے. باپ نے کچھ 10 روپے ادھار لیے, اس کے عوض میں جو ہے قرض پہ
غلام
ہو جاتی تھی. انہوں نے بینکوں کو نیشنلائز کیا اور بہت ایجوکیشن پہ بہت انہوں نے دھیان دیا. انہوں نے بڑے بڑے جو اسکالرس تھے ان کے ساتھ مل کے یہ سوچا کہ ہندوستان کی نسلوں کو اگر آگے آنا ہے, ہندوستان کے بچوں کا فیوچر برائٹ کرنا ہے, تو 3-language پروگرام بنایا کہ ہر بچے کو انگریزی سیکھنا کمپلسری ہے, چاہے ہائر لیول کی ہو چاہے لوئر لیول کی. ایک اپنے لینگویج
انٹرنیشنل لینگویج مست کر دی.
ہاں, ایک اپنی لینگویج مدر ٹنگ جو بھی تمہیں ٹھیک لگتی ہے وہ کرو, اور ایک تیسری شوقیہ طور پہ لینگویج لو. ہر بچے کو 3 language سیکھنا انہوں نے کمپلسری کیا, اور اس میں بہت بڑے بڑے اسکالرس ان کے ساتھ تھے. اور وہی وقت تھا 1966 کا جب سے ہندوستان میں انگریزی کا دور شروع ہوا بچوں میں, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین بچے انڈین
چیف
کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن وہاں سے یہاں پہ عارفہ جی آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, اس طرح سے اور بہت سارے کام
کیے.
راجاؤں کا پریوی پرس ختم کیا. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جو انہوں نے بانڈیڈ لیبر ختم کیا اور فری ایجوکیشن کی اور انگریزی میں جو ہے انکریج کیا.
پہلے بتا چکے.
یہاں پر مجھے ایک چیف ایگزیکٹو ملے ایک بہت بڑی کمپنی کے, جنہوں نے انڈیا سے انجینئرنگ کی اور جا کے یورپ میں جا کے پی ایچ ڈی کی, پھر ڈبل پی ایچ ڈی کی, اور چیف ایگزیکٹو تھے ایک بڑی کیمیکل کمپنی کے. اس نے بتایا مجھے کہ پردیپ, میرا جو باپ تھا, میرا دادا جو تھا, وہ بانڈیڈ لیبر تھے, اور میرے بھائیوں کو بھی جو ساہوکار تھا اس نے پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی, لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ جب یہ بانڈیڈ لیبر کا سسٹم ختم ہوا, اس سمے میں 5th class پاس کر رہا تھا, جبکہ
ساہوکار
نے کہہ دیا تھا کہ اب تو آگے نہیں پڑھے گا. تو ساری اس کی کہانی چینج ہوئی. اس طرح لاکھوں کروڑوں کی کہانی چینج.
بہت شکریہ. میں ایک بات یاد کرتی ہوں, اگر مجھے اور آپ کو پاکستان میں ہر چیز پہ سبسڈی چاہیے تو پاکستان پروگرس نہیں کرے گا. ملک میں ٹیکسز کی بھی ضرورت ہے, ملک میں امیر طبقے کی مراعات لازمی کم ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ یور اینمی کین بی یور رول ماڈل. آئی وش کہ میرے ملک کو اس طرح کے لیڈرز مل جائیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں سعودی عربیہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتی ہوں, تو ماجد بھائی سعودی عربیہ سے کوئی انڈین بہت سی نرسز وہاں پہ ہوا کرتی ہوتی تھی, بیکاز آئی ہیڈ اراؤنڈ 3-4 months اسٹیڈ ان دا ہاسپٹل وتھ مائی مدر. اور آپ امیجن کریں کہ سونے کی چین بھی اگر کوئی لے کے آتا تھا ہندوستان میں تو وہ اس کا ٹیکس پے کرتا تھا, یعنی چوری کا رجحان نہیں تھا. اور میرے ملک میں تو لیڈرز پیسے لے کے نکلتے ہیں, میرے ملک میں لیڈرز پیسے لے کے نکلتے ہیں. دیٹ از دا ریزن انسان کے سیکھنے کے لیے رول ماڈلز कोई भी हो सकता है. दीज आर द लीडर्स जिन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया. सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सासुवास, मैं आपके साथ आरफा मुजफ्फर. एक दो स्पॉन्सर्स एंड विल प्ले वन ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा.
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ.
बस इतनी छोटी सी बात. पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही. दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी.
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ.
जी जी बिल्कुल. पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन. पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879. दैट इज 9057907879.
एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशंस ते 15 अगस्त तो 26 अगस्त तक लग चुकी है रखड़ी सेल. वी पॉन स्वर्ण होल व्हीट आटा 999, 341 ग्राम नानक पनीर 499, 1 पाउंड वाघ बकरी टी 1099, 10 पाउंड इंडिया गेट रोजाना राइस 1199, 1.6 किलो नानक देसी घ्यो 2599, 4 पाउंड एशियन काला चना 499. एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशंस ते तुसी ताजे फल फ्रूट सब्जियां भांडे अते मिठाइयां भी ले सकदे हो. एशियन फूड सेंटर 416-740-3262.
इन्ना सोना कर लिया, हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए.
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते. ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828. 905-450-2828.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका. 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3. ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800.
प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ. साहब, लीडर्स की बात हम कर रहे थे ना, तो अगला प्रोग्राम मेरा जो है जनाब प्रदीप जी मेरे साथ होंगे सनराइज के साथ. आइए मैं शेयर करती हूँ. आज जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं मेरा बच्चा सोने के नवाले लेगा और सोने के चम्मच से खाएगा, वो मेहनत नहीं करते. मोहतरमा इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी शेयर करेंगे आपके. उन्होंने राजीव गांधी जॉब पायलट थे, जॉब करते थे, और उनको रूट क्या दिया गया था.
आरिफा जी, राजीव गांधी पायलट थे और उनको इंडियन एयरलाइंस में रखा गया था, जो कि उस समय एयर इंडिया के से काफी नीचे लेवल पर समझी जाती थी. और रूट भी जो उनको मिला था, जो आपने सवाल पूछा, वो एक बहुत ही मामूली रूट था. वो था दिल्ली से चलो और मल्टी स्टॉप करने पड़ते थे. दिल्ली से चलो 30-40 मिनट के बाद आगरा आ जाता था, आगरा पे बहुत देर रुको, फिर आगरा के बाद बनारस, बनारस के बाद एक जगह थी खजुराहो, खजुराहो में फिर घंटे,
और ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा
है, फिर उसके बाद बनारस, फिर बनारस से आगरा आओ, आगरा से वहां पे. तो उस समय मैं आगरा में एक कंपनी में मैनेजर था, बहुत बार दिल्ली जाना पड़ता था और अक्सर करके दिल्ली शाम को, क्योंकि अपना काम खत्म करो फिर शाम को जाओ, अगले दिन मीटिंग करके फिर सुबह चले आओ. तो राजीव गांधी जी, जबकि इंदिरा जी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, वो उस प्लेन था एक छोटा सा, उसको फोकर फ्रेंडशिप का प्लेन कहलाता था अक्सर करके, बहुत छोटा प्लेन था, उसको चलाते थे. वो सुबह दिल्ली से कोई 8 बजे रवाना हो जाता था, फिर आगरा आया, आगरा पे घंटे भर रुका, फिर बनारस गया, इस तरह से और कई जगह रुकता झुकता, शाम को फिर 6 बजे दिल्ली आगरा पहुंचता था. तो कई बार राजीव गांधी मिलते थे, वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी पेशेंट,
लोगों से मिलते थे,
मिलते भी थे, लोग जो उनसे मिलने जाते थे उनसे गपशप भी लगा लेते थे।
हाँ
बिल्कुल, क्योंकि अक्सर करके मैं उसी में जाता था, तो कई बार वो कहते थे जो पहचान जाते थे रेगुलर पैसेंजर्स को, अरे यार तुम फिर आ गए आज, है ना, अच्छा सुबह तो गए थे फिर शाम को वापस जा रहे हो, अच्छा, इस तरह की बातें वो किया करते थे।
हाथ भी मिलाया कभी?
हाथ भी मिलाते थे वो उसमें। ही वॉज वेरी अनएज्यूमिंग, वेरी फ्रेंडली,
ही वॉज नॉट स्टेटस कॉन्शियस, ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं।
नहीं वो नहीं, वो अपने आप को पायलट और उनको पैसेंजर्स और कभी बात भी एक आध बात हुई तो एक तो कम बोलते थे, बस फिर भी कहा पैसेंजर लोग हैं इसलिए पायलट लोग भी हैं, है ना, ये तो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। ही वॉज अ वेरी अनएज्यूमिंग, वेरी डिसेंट एंड फ्रेंडली जेंटलमैन।
सो मुझे इससे बेख्तियार बरतानिया का ख्याल आया कि बरतानिया में भी क्वीन के बच्चों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर, फिर भी उन्हें तो फिर भी वो प्रोटोकॉल दी गई, मगर मोहतरमा इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने भी एज ए पायलट जब सर्व किया तो मतलब एक फोकर जहाज में एज ए पायलट, और सारा दिन सुबह से निकल के रात को थक हार के जाके अगले दिन फिर दैट्स व्हाट जॉब ही डिड, एंड दीज आर द लीडर्स, दीज आर द लीडर्स। एक गीत की तरफ आपको लेके चलती हूँ माजिद भाई, गीत कौन सा है? प्रदीप जी ये गीत आपके लिए लेके आए हैं, प्रदीप जी आप ही बता दीजिए गीत कौन सा है।
माजिद भाई लगा रहे हैं
सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मैं हूं ना किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। समाप्त भाई,
थैंक यू माजिद भाई।
किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार, मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना देख लो किधर तो एक बार, मैं हूं ना। अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, सरकार मैं हूं ना
किसका है तुझको इंतजार, मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। खामोश क्यों हो जो भी कहना है तो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो,
जी साहब नाजरीन वेलकम बैक अगेन एंड 4:51 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और ट्यूसडे का दिन अगस्त की 20 तारीख ब्यूटीफुल गॉर्जियस स्टिल 19 डिग्रीज टेम्परेचर इसमें मेरे साथ अच्छे मौसम में एक अच्छे शख्सियत मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियो में और वो है जनाब आपकी जानी पहचानी शख्सियत प्रदीप जी और प्रदीप जी का ताल्लुक सन लाइफ फाइनेंशियल से है। मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूं प्रदीप जी को। प्रदीप जी वेलकम टू रेडियो साज़ो आवाज़। कैसे हैं सर?
थैंक यू वेरी मच माजिद भाई और एक बार फिर से मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक हूं मैं और जैसा कि मैंने कई बार अर्ज किया है 25 साल हो गए मुझे सन लाइफ में काम करते हुए लाइफ इंश्योरेंस और सारी रिलेटेड एक्टिविटीज को सर्व करते हुए। सन लाइफ बहुत पुरानी कंपनी है 1865 से काम कर रही है फुल्ली कैनेडियन कंपनी और ये वाहिद कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की पूरे नॉर्थ अमेरिका में जिसे 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशंस में शुमार किया गया है। माजिद भाई तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है लेकिन सबसे बड़ी बात कस्टमर सर्विस। हर क्लाइंट के पास अपना एडवाइजर है जो उसके सब तरह के काम करता है इंक्लूडिंग क्लेम सेटल करना क्लेम बनाना। कोई फीस नहीं है और दूसरी चीज कंपनी की स्ट्रेंथ है स्मूथ क्लेम सेटलमेंट। बहुत बहुत स्मूथ क्लेम सेटलमेंट होता है बहुत डिग्निटी और ग्रेस के साथ इसलिए जितने लोगों के क्लेम सेटल होते हैं वो अक्सर करके सन लाइफ से आगे डील करना चाहते हैं नए नए प्लान्स लेना चाहते हैं और एडवाइजर को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और प्लान्स लेके आगे बिजनेस भी बढ़ाते हैं।
4168945872 जिना प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी लाइफ इंश्योरेंस में ऑफकोर्स हर एक में कुछ ना कुछ हेजिटेशंस होती हैं आपके पास सब ऑलमोस्ट 3 decades का ये एक्सपीरियंस है।
ढाई है ना
ऑलमोस्ट
राउंड कर लिया
उसको
सही बात
तो राउंड अपने फायदे के लिए करेंगे ना हम
सही बात
तो राउंड कर दिया उसको राउंड में आपके पास ऑलमोस्ट 3 decades का ये एक्सपीरियंस है और सब इसमें आपने आपके साथ में कई डिफरेंट मरहले आए होंगे कि लोगों के पास हेजिटेशन बहुत एक वर्ड आता है कि मेरे पास यस इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है या क्यों लेना है कितने का लेना है मेरे पास टाइम है नहीं है क्या है क्या नहीं है मेजर हेजिटेशंस क्या आप देखते हैं।
बहुत सही सा आपने कमेंट किया माजिद भाई। आपने देखा है कि आरिफा जी और आप भी और मैं तो हूं ही बोल बोल के अपने आप को समझता हूं कि तोता बन गया है कि इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है लो बड़ा नहीं ले सकते तो छोटा ले लो कंसीडर कर लो कोई कॉस्ट नहीं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लोगों के साथ कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि ये रियलाइज नहीं कर पाता कि उनको इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों के आगे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आप श्योर नहीं कि आपको इंश्योरेंस चाहिए तो इसके 2 बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं है। पहला तरीका तो ये है कि एक दिन अकेले में आप बैठें अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि अभी आपका आखिरी लम्हा है अब आपकी आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी और अगर आपकी दोबारा आंखें नहीं खुलेंगी तो आप सोचें कि आपने अपनी फैमिली के लिए जो कर सकते थे वो आपने कर दिया और आपके जाने के बाद जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए उसके बाद आपकी फैमिली के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया कि नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर दिया फिर तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कसर रह गई या मैं इंश्योरेंस ले लेता जिससे कि मेरी बेटी की शादी में या बेटी की पढ़ाई में या घर के रेनोवेशन में या वाइफ को एक्स्ट्रा सपोर्ट का सहारा हो जाता तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत डेफिनेटली है। ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव टेस्ट है आपके लिए। आप ये करें अपनी आंख बंद करें अकेले में बैठ के और इमेजिन करें कि आपका ये आखिरी लम्हा आ गया अब आपकी आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी तो उस समय जो कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर आपके मन में जो ख्याल आएंगे उससे आप बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकेंगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए।
अब एक और सवाल और ये हर एक के दिमाग में आता है मनी एंड टाइम।
बिल्कुल बिल्कुल माजिद भाई हर आदमी को लगता है कि कि उसकी काबिलियत के हिसाब से जितना पैसा उसके पास होना चाहिए वो है नहीं, और चूंकि वो बहुत काबिल आदमी है और पूरी दुनिया के मामलों की पकड़ रखता है, पूरी दुनिया को कैसे चलाना है उसका सिस्टम सिर्फ उसी को पता है, तो उसके पास वक्त की तय बात है बहुत कमी है, उसके पास टाइम की भी बहुत कमी है और पैसे की भी बहुत कमी है उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो ऐसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी दुनिया की सियासत पे पकड़ रखते हैं, सबसे सारे टाइम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, इंडिया की, पाकिस्तान की, अमेरिका की, जापान की, कम से कम अपने घर के लिए